नमस्ते। हम लोगों ने अभी बुक वन प्रथम खंड उसको समाप्त किया है और उसमें हम देखते हैं कि अश्वपति अपनी योग यात्रा में पहले वे सारे अनुभव बटोरते हैं जो ट्रेडिशनल योग में होते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, मोक्ष इत्यादि, जो भी बहुत सारे अनुभव हैं जो वैदिक ऋषियों के अनुभव हैं। फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते एक साइको स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की अवस्था को अनुभव करते हैं, खासकर डिसेंट। ये इस योग की एक खूबी है, कई अलग चीज़ें हैं, भिन्न हैं इस योग में। जैसे कि डिसेंट, डिसेंट यानी चेतना आरोहण तो करती है लेकिन उससे अधिक इम्पॉर्टेंट है कि अवतरण होता है एक चेतना के अन्य स्तरों का, अन्य लोगों का, उनकी शक्तियों का, वे हमारे अंदर उतरती हैं और चेतना का रूपांतरण करती हैं। तो जब वो उसका अनुभव करते हैं तो अश्वपति के पास एक चुनाव है, एक चुनाव है कि वो आगे बढ़कर अपना रूपांतरण करते चले जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो साइको स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि मानव मन के परे जो चेतना की भूमि है, आध्यात्मिक चेतना की भूमि, आध्यात्मिक मन भी कहा जाता है, उसकी ऊर्जाएं शरीर में, मन में, प्राण में प्रवेश कर रही हैं और वे चाहें तो वो उन रेस के माध्यम से चढ़ते हुए सूर्य तक चले जाएं और अपना रूपांतरण कर लें। किंतु इस समय एक दूसरी संभावना भी है कि वे अब एक रिप्रेजेंटेटिव बन के पूरी मनुष्य जाति के लिए वे आरोहण करें, वो पूरी इस संसार कैसे बना है और संसार का रूपांतरण कैसे हो, जो चीज़ वो अपने अंदर घटित हो रही है उस वो घटना संसार में कैसे घटित हो। क्योंकि एक चीज़ स्पष्ट है कि वो देख रहे हैं कि यदि ऐसा होता है तो हम मेरी चेतना में, व्यक्तिगत चेतना में उनके जो चेंजेस आ रहे हैं, जो रूपांतरण आ रहा है, यदि ये संसार में हो जाए तो इट विल बी समथिंग वेरी ब्यूटिफुल। तो इसके लिए अब ये बुक टू, जो बुक ऑफ द ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड, जिसको शेरविन ने बार बार रिवाइज करके बहुत एनलार्ज किया है, ये पुस्तक प्रारंभ होती है। अब इस पुस्तक का मूल उद्देश्य ये है कि नॉर्मल हम लोग चेतना की बाहरी अवस्था में रहते हैं और हम लोग सुनते हैं भगवान है, चैत्य है, स्पिरिट का एक क्षेत्र है इत्यादि, ये सब वी हियर ऑल दीज थिंग्स, अब पढ़ते भी हैं। तो पढ़ने, सुनने और जानने और बनने में बहुत बड़ा अंतर है। क्यों हम नहीं बन पाते? हम जानते हैं भगवान सबके अंदर है लेकिन हम क्यों नहीं पहुंच पाते? तो उसके लिए एक सीढ़ी है। जैसे आप अमरनाथ जा रहे हो तो आपने टिकट ले लिया कि अब हम अमरनाथ चलेंगे, सब यात्री शुरू हो गए तो आप पहाड़ तक पहुंचे, वहां तक तो बहुत अच्छे से चले गए, लेकिन अब जो दुर्गम चढ़ाई होती है, बहुत से लोग, दुर्गम चढ़ाई है, बड़ी सिंबॉलिक है, टेररिस्ट भी हैं उधर, बड़े सुंदर दृश्य भी हैं और धीरे 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 चढ़ते चढ़ते दम फूट सकता है, हर व्यक्ति तैयार नहीं है उसके लिए। फिर एक समय आता है जब आपको गुफा में अकेले प्रवेश करना है, संकरी से गुफा के थ्रू जाना है, तो जानने और उस दूरी को तय करने के बीच एक गैप है, वो मार्ग है जिसके थ्रू हमको जाना पड़ता है। और वो मार्ग किस लिए बना है? ताकि जब हम वास्तव में वहां खड़े हों, उस द्वार तक पहुंचे, तो हम उस ऊर्जा को, उस शक्ति को अपने अंदर धारण करने के लिए सक्षम हो सके। कई बार लोग ये पूछते हैं कि इतना बड़ा रास्ता क्यों ट्रैवल करना पड़ता है, भगवान सबके अंदर हैं तो क्यों नहीं वो सीधा अपने आप को दिखा देते हैं? तो हम कल्पना करें एक क्षण के लिए कि ये सारे ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, केवल मैं मेटीरियल जगत की बात कर रहा हूं, ब्रह्मांड केवल जगत की नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जितने अनेकों नक्षत्र, तारे, एक एक तारा ऐसा है, अनेकों तारे ऐसे हैं जो हमारे सूर्य से 100 गुना अधिक प्रचंड हैं अपने तेज में, और ये सारी ऊर्जा केवल मेटीरियल ब्रह्मांड की हम कल्पना करें तो कैसी ऊर्जा होगी। अब ये केवल मेटीरियल जगत की ऊर्जा है, प्राण जगत की ऊर्जा, मनोमय जगत की ऊर्जा और उसके परे जो क्षेत्र हैं, उन सब ऊर्जा को धारण करके अपने अंदर जो तेजो में पुरुष बैठे हैं, वो ऐसे दर्शन जब कठोपनिषद में, इसीलिए तपस्या करनी पड़ती है यदि दर्शन प्राप्त करना हो। कठोपनिषद में कहते हैं ना कि वो यम से पूछते हैं कि हमको दर्शन करना है उनका, वो कैसे हैं, तो कहते तू उनका दर्शन करना चाह रहा है जिनके सामने सूर्य धब्बे जैसा लगता है, काले धब्बे जैसा। तो लेकिन हमारा अल्टीमेट गंतव्य वही है क्योंकि हम वहीं से आए हैं। तो वो जो यात्रा है जिसमें हम लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर चढ़ते जाते हैं और तैयार होते हैं इसके द्वारा कि एक समय ऐसा आए जब हम यदि उस परम सूर्य को नहीं भी तो कम से कम उन ऊर्जाओं को, उस रेज को, इफ नॉट द सन, अल्टीमेटली सन के साथ एक होना है, तो हम कम से कम उस रेज को वहन कर सके। इस योग में यह काम दोहरा कठिन हो जाता है, क्योंकि यदि आपको सूर्य के अंदर प्रवेश करना है, प्रवेश करके भस्म हो जाना है, तो कोई समस्या नहीं है, समस्या है, आसान नहीं है वहां तक जाना, लेकिन कम से कम यह है कि आप थोड़ा पास में उड़ गए तो फिर यह है कि भाई अब उसके अंदर आप समा जाएंगे, एक बार उसके ऊर्जा मंडल में आ गए तो आपको खींच लेगा और समाप्त हो जाएंगे। कई योगी इसकी बात करते हैं कि उस सूर्य लोक में प्रवेश करके सारे कर्म जल जाते हैं, वो एक प्रकार का महानिर्वाण है, जिसके बाद वापस आने की तो बात ही अलग है, कुछ बचता ही नहीं है उस प्रचंड तेज के अंदर। लेकिन यहां पर केवल उस तेज के अंदर समाना नहीं है, उस तेज को अपने मन प्राण शरीर में धारण करना है। अब देखिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखिए, ना केवल शरीर मन प्राण में धारण करना है, इनको हम थोड़ा बहुत समझते हैं, हम सबके पास एक थोड़ा सा मन है, थोड़े बुद्धि काम करती है, तर्क शक्ति काम करती है, कल्पना काम करती है, हम इंद्रिय कार्य करती हैं, इसको तो हम समझते हैं, लेकिन मन के और भी क्षेत्र हैं ऊर्जाओं के, सन बेल्ट्स ऑफ नॉलेज, मून बेल्ट्स ऑफ डिलाइट, जिनके बारे में हम नहीं जानते, साधारणतः मनुष्य नहीं जानता। वो अगर प्रकट हो जाए परम सूर्य की तो बात हम छोड़ दें, वो वही चेतना के स्तर इतने तेजों में है कि व्यक्ति उनको देख के ऐसा समझ सकता है कि उसने भगवान का दर्शन कर लिया। माता जी बताती हैं कि यही हुआ है रिलीजन्स में, कि ओवर माइंड गॉड्स को उन्होंने देखा और समझा कि यही भगवान है, इतना तेजों में, इतना प्रताप, इतना प्रकाश। तो एक तो इसके बीच की जो सीढ़ी है वही हमारे अंदर प्रवेश करे, फिर हमारे अंदर जो प्राण, खासकर निम्न प्राण शरीर, ये सब बहुत दूर है सूर्य का प्रकाश, मन के सीमित टिमटिमाते दिए को भी वो अभी तैयार नहीं है उनके सामने लाने को। इसका एक साधारण एग्जाम्पल है, माँ कहती है बी रीजनेबल। बी रीजनेबल का क्या अर्थ है कि हमारी जो प्राण तत्व की अनेकों अनेकों चीजें हैं, जो मर्जी जब किसी ने किसी को कुछ कह दिया, जो मर्जी वैसे चले गए, और उसको रीजन के, तर्क के अधीन करना, यही एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, साधारण नहीं है, क्योंकि हम रीजन को यूज करते हैं जस्टिफाई करने के लिए। और फिर अगर हम और नीचे जाएं तो इस देह के नीचे एक पूरा एबिस है, हम कहते हैं इसको धरातल, इस धरातल के नीचे है रसातल, ये रसातल पर धरातल टिका हुआ है, विचित्र भूमि है ये, और वो रसातल के अंदर जैसे ऊपर ऐसी शक्तियां हैं, तेजोमय शक्तियां जिनको धारण करना कठिन होता है, वैसे ही रसातल के अंदर ऐसी भयानक विकराल शक्तियां हैं छद्म वेश धारण करके, जो पाइथन एग्नीज, वो बिल्कुल अजगर विषधर जो निकलने लगते हैं, क्योंकि जब प्रकाश पड़ता है तो सब कुल मिलाते हैं। अभी कोई बता रहा था कि एक सीरियल जिसमें कोई एक व्यक्ति है, एक जगह है जहाँ पे कहीं फॉरेस्ट है, जहाँ के वासी उसको ये समझते हैं कि यहाँ पर पाइथन है और वो पाइथन को पूजा करते हैं, लेकिन वो पाइथन किसी ने देखा नहीं है, वो जंगल में छिपे हुए हैं। तो एक व्यक्ति जो फॉरेस्ट रेंजर कहता है मैं जाके ढूंढूंगा, और वो जाता है, जाते जाते वो पूरी गुफा इतनी संकरी हो जाती है, उसमें रेंग के जा रहा है, एक सांप पकड़ता है, कहता है नहीं नहीं ये नहीं है, उधर कर देता है। फाइनली वो कहीं से पाइथन को पकड़ लेता है, उसको खींच के बाहर निकाल रहा है, वो कंस्ट्रिक्ट कर रहा है उसको। बाद में जब निकाल के बाहर लाता है तो वो जो गांव के लोग बाहर इकट्ठा है, प्रणाम करने लगते हैं, कहते हैं आप तो हमारे लिए देवतुल्य हो, ये हमारे देवता हैं, हम इनको देख नहीं पाए थे। फर्स्ट न जाने डिकेड्स या सेंचुरीज उन्होंने पाइथन देखा नहीं, वो छिपा रहता है उन गुफाओं में। तो हम लोगों की भी ऐसी कुछ अवस्था है कि हम सब अपने आप को, हम सब बड़े महान हैं बातचीत करने में, लेकिन जब ये रसातल का क्षेत्र खुलता है और जो नरक की अग्नि है, एक और तो वो अग्नि है प्रचंड अग्नि, वो झुलसाती है, और नीचे नरक का ताप, नरक की अग्नि ये जलाती है। तो जब ये प्रोसेस प्रारंभ होती है, और वो निकलेंगे, क्योंकि भगवान का जब प्रकाश पड़ेगा तो वो बिल के अंदर छिपी हुई चीजें निकलेंगी। इसीलिए इस योग में बार बार श्री अरविंद माता जी बताते हैं कि रिलाई ऑन द मदर,
कोई व्यक्ति अगर ऐसा सोच रहा है कि वो अपने इंटेलेक्चुअल उसके सहारे पर या कर लेगा एफर्ट के सहारे पर, तो वास्तव में वो यही सबसे बड़ी मूर्खता कर रहा है. बाकी तो बाद में करेगा. जब एक्चुअल वर्किंग अगर हो गई शुरू, तो बाद में तो जो होंगी वो अलग होंगी. तो इसलिए इस ये संसार कैसे बना है उस टेक्नोलॉजी को जानना जरूरी है. इस योग में ये जानना बहुत जरूरी है कि विश्व की शक्तियां ऊर्जाएं कैसे कार्य करती हैं. ट्रेडिशनल योग में ये आवश्यक नहीं है. ट्रेडिशनल योग में आपको केवल इतना जानना है कि आप एक जगह हो, आपको वहां पहुंचना है, कौन सा शॉर्टकट है जिससे आप निकल के चले जाओ, क्योंकि आपको पार जाना है. लेकिन इस योग में आपको पार नहीं जाना है, उस पार को यहां उतारना है. तो पूरी इस शहर की व्यवस्था जिसके अंदर हम रह रहे हैं, छोटा सा गांव है जिसको हम कहते हैं संसार, तो उसमें कौन कौन सी शक्तियां हैं, कौन कौन से लोग हैं, कौन से वासिंदे हैं, ये सब जानना हमारे लिए आवश्यक है. और ये अशुपति अपने एक्सप्लोरेशन के थ्रू हम सबको ज्ञात कराते हैं कि ये कौन से जगत हैं, उनकी शक्तियों का क्या प्रभाव है हमारे अंदर, ताकि जब इनका एक्चुअल वर्किंग शुरू होती है. अधिकतर मैं देखता हूं कि लोग जब बात करते हैं श्री अरविंद योग की, तो या तो सीधा सुपरमाइंड की बात करते हैं, उसके नीचे नहीं बात करते, या सीधा चैत्य हमने प्राप्त कर लिया. लेकिन जो सबकॉन्शियंट और ये संसार कैसे बना है वो उसके बारे में नहीं जानते. तो यदि हम नहीं जानते उसके बारे में, और जब ये खेल एक्चुअल शुरू होगा रियल टाइम में, दैट्स व्हाई ऑलवेज से योगा इज नॉट ए बुक रीडिंग, योगा रियल टाइम में होता है. रियल टाइम मतलब जीवन के थ्रू अनफोल्ड करता है, उसमें क्या निकलेगा. इसलिए माँ बताती है इट्स ए ग्रेट एडवेंचर. तो यहां बुक टू में अशुपति एज ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड्स, कौन सा संसार, कई जगत हैं, हम केवल एक जगत को जानते हैं. हिंदी में बड़ा सुंदर शब्द है जगत, वह जो गतिशील है. अब गतिशील कहां से शुरू होती, क्वांटम पार्टिकल्स में भी गतिशीलता है, सूक्ष्म मैटर. अब आप उस पर चढ़ते चले जाइए, सौर मंडल और आगे चलते जाइए, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ये सब स्पिन कर रहे हैं. इनका केंद्र क्या है हम नहीं जानते. और ये जड़ जगत है, जड़ जगत के ऊपर अगर आप जाएं तो प्राण जगत, मनोमय जगत, प्रकृति, सब जगह गतिशील है. और ये सब प्राण से भरे हैं, जीवन है इनके अंदर. और जीवन ही नहीं है, सत्ताएं हैं, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है. तो सब जगह सत्ताएं हैं, सब जगह सीमित या विस्तृत आनंद है, सब जगह चेतना है, सब जगह ज्ञान है, सब जगह शक्ति है, अपने अपने बींग्स के हिसाब से. और ये सब जब तक हम सीमित जीवन जीते हैं कंफर्ट जोन में, तब तक कोई समस्या नहीं होती. मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक कहते हैं ना. लेकिन जिस दिन मुल्ला ने कहा कि मस्जिद से परे क्या है, तो उसका फतवा निकल जाएगा, लिटरली सो. तो जब तक हम विश्वास रखते हैं भगवान है, पूजा कर ली हमने और ठीक है, कोई समस्या नहीं है. जिस दिन हम कहते हैं कि नहीं हम रास्ते पर चलेंगे, बहुत बड़ा निर्णय है ये, तो वैसी शक्तियां कार्य करने लगती हैं जिनके बारे में हमको ज्ञान नहीं है. तो यहां उन सब का वर्णन है. अब ये जो लोक हैं चेतना, इसको इस प्रकार से बनाया गया कि प्रारंभ कहां से हुआ, उन एक से. वो कौन है, सच्चिदानंद. तो वही सच्चिदानंद में से, इसके आगे भी है उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, पर एक बेसिक प्लान समझ लें. ये जो लोक हैं जिनका वर्णन पुराणों में भी है और जिनका वर्णन हम लोग वेदों में भी देखते हैं, उसको एक बेसिक रूपरेखा समझ लें. तो सच्चिदानंद, सत, चित, आनंद, ये ट्रायून यूनिटी है. तो सत प्योर एग्जिस्टेंस, जहां से सारी सत्ताएं आती हैं, प्योर एग्जिस्टेंस, वो ओरिजिनल एग्जिस्टेंस है. हम सब कहते हैं ना हमारी एक सत्ता है, सीमित सत्ता है. वो सत्ता का भाव कहां से आता है, सत से आता है. चित है, चित के अंदर दो एस्पेक्ट हैं, चित तपस, ज्ञान है और शक्ति है. और इसीलिए हर चीज के अंदर, इवन अणु के अंदर एक सीमित ज्ञान है, और अणु के भी अंदर एक ऊर्जा है, शक्ति है. अभी तो हम लोग ये देख रहे हैं कि वो सीमित ऊर्जा है अणु के अंदर, लेकिन वो असीम हो सकती है. अगर आप उसके खंड कर दो या उसको ज्वाइन कर दो, उसमें किसी प्रकार का आप एक नवीन समीकरण पैदा कर दो, तो उसके पीछे अखंड ऊर्जा छिपी है. तो वास्तव में ये अखंड ऊर्जा ने ही अपने आप को सीमित किया हुआ है. किसके द्वारा सीमित किया हुआ है, वह शक्ति जो उस अखंड अनंत ऊर्जा को, अखंड अनंत ज्ञान को, अखंड अनंत सत्ता को, अखंड अनंत आनंद को सीमित करती है, वही माया है। और किसकी माया है? भगवान की माया है। क्यों ऐसा करती है? क्योंकि एक को अनेक बनना है। तो आपके पास बहुत सारा दूध है, आप कहते हैं कि मैं तो आइसक्रीम बनाऊंगा, तो आइसक्रीम ऐसे थोड़ी आप दूध लेकर के रख देंगे, उसमें क्या मजा आएगा? आप उसको खांचे में डालेंगे, अनेक तो हुआ नहीं, फिर तो वो आपने दूध जमा दिया, तो आप उसको किसी खांचे में डालेंगे, उसमें पिस्ता डाल देंगे, वो कहेंगे ये पिस्ता आइसक्रीम बन गई। दूसरे खांचे में आपने बेसिक सब्सटेंस सेम है, दूध है, चीनी है। आई होप आई एम राइट, आई डोंट नो, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन आइसक्रीम, डोंट यूज दिस रेसिपी। कोई उसके अंदर जो भी डालते हैं, जिससे बटर स्कॉच बनता है तो बटर स्कॉच बन गया, कोई उसके अंदर काजू डाल देगा तो स्पेनिश डिलाइट, कोई चॉकलेट डाल दे, हाँ मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कोई, हाँ कोई उसके अंदर चॉकलेट डाल देगा तो चॉकलेट आइसक्रीम, तो विविधता बन गई। तो माया क्या करती है? इस प्रकार से अलग अलग खांचे। खांचा क्या है? हमारी ईगो सेल्फ। अब ये खांचा क्यों जरूरी है? ताकि उसके अंदर प्रकृति का एक समीकरण एक पैदा होता है, और एक सेंटर चाहिए उसके लिए। तो जब हम अज्ञान में रहते हैं तो वो सेंटर होता है ईगो, लेकिन वो जरूरी है, क्योंकि अगर हम प्रीमेच्योरली, बिना उस ईगो इंडिविजुअलिटी के, अगर प्रीमेच्योरली हम खुल जाएंगे तो क्या होगा? जैसे आइसक्रीम जमी नहीं, आपने उसको खोल दिया तो क्या होगा? वो तरल पदार्थ रहेगी, खाने में मजा नहीं आएगा। तो इसलिए वो जमने के लिए ईगो क्या करती है? वो कहती है मैं अलग हूं, ये अलग है, तो वो सब अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी बनती है। चैत्य तो यूनिवर्सलिटी की ओर खोल देगी आपको। तो पहले एक नेचर, फिर उसके बाद ईगो इंडिविजुअलिटी धीरे 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 पाशर्व में जाती है, समाप्त नहीं होती है, लेकिन चैत्य आता है। अब चैत्य कहता है अच्छा ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा काम है, इस पे मैं काम करूंगा, और धीरे धीरे हमको यूनिवर्सैलिटी की ओर, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की ओर खोलता है, इत्यादि इत्यादि। तो ये खेल है। तो अब वो जो एक है, अब पहले वो लोक की सृष्टि होती है, तीन जो वे लोक हैं जिनका प्रलय नहीं होती, जहां पे सतलोक, सत से बना सतलोक। सतलोक कैसे बना? सच्चिदानंद ही है वहां भी, सब जगह सच्चिदानंद है, लेकिन वो अपने सत एस्पेक्ट को प्रोमिनेंट करते हैं, और चित और तपस और आनंद पाशर में रहता है। सत एस्पेक्ट है सच्चिदानंद, लेकिन वहां हर एक बीइंग सच्चिदानंद की चेतना को पूरी तरह उनको जानता है। फिर बना चिदघन लोक, चिदघन लोक में तपोलोक, चिदघन लोक, तो वहां पे एक एस्पेक्ट सामने हुआ, बाकी पीछे चला गया। फिर आनंद लोक, जहां कृष्ण जी नित्य रास, द रियल ओरिजिनल वृंदावन, तो भगवान उससे ही प्रसन्न हो जाते। फिर ये झमेले की क्या जरूरत थी? भगवान है, थोड़ा तो उनका मान रखना चाहिए, एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट कौन करेगा? इसलिए इस गेम को कहा गया है द गेम ऑफ गेम्स वॉज प्लेड एट इट्स हैजार्डस ब्रेकिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि वहां पे जितने भी बीइंग्स हैं वो जानते हैं कि हम तो एक हैं, तो क्या होता है? घुल मिल जाते हैं। नाचते नाचते गोप गोपियों को पता नहीं चलता कि वो ये वाला गोप है या वो वाला गोप है, और वो कृष्ण है कि क्या है। तो अब इसमें उतना आनंद नहीं है जितना जब दो मित्र बिछड़ते हैं और 20 वर्षों बाद, न जाने कुछ जन्मों बाद मिलते हैं, एक दूसरे को बाहर से भूल गए हैं लेकिन स्मरण करते हैं, उसका क्या जॉय है। तो भगवान ने कहा नहीं, वो जो अल्टीमेट डिलाइट, तो उन्होंने माया प्रकट हुई। तो प्रारंभ में माया विद्यामयी माया है, तो वो उन्होंने जो रचना की मल्टीप्लिसिटी, उसी एक के अंदर अब ये तीन लोक तो हैं, लेकिन कहते हैं ना चिन्ना चिन्ना, छोटे 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 सारे ज्योतिर्कण सोल्स, सेंट्रल बीइंग, उनकी रचना की। अभी तक सृष्टि नीचे नहीं आई है, तो वो उनकी रचना की, अब आनंद है, वो है और एक है, इट इज वेरी नाइस, एवरीथिंग इज फाइन, वंडरफुल। लेकिन अभी भी गेम का जो रियल वो प्रारंभ नहीं हुआ। तो एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, इट्स ए वे ऑफ सेइंग, वैसे हुई। भगवान ने कहा और गेम को जरा खेला जाए, और हाँ खेलते हैं, देख लो एकदम महाअंधकार में प्रवेश करने वाले हैं। नेक्स्ट लेवल जो गेम का है वो ये नहीं होगा, ठीक है आप रहोगे साथ में, मैं तो हमेशा रहूंगा, फिर परम आश्वासन, व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो बस फिर क्या हुआ, प्लंज हुई वो चेतना, तो वही जो विद्यामयी है, अब वो प्लंज नहीं हो सकती जब तक वो अपने ऊपर वेल ना डाल ले, तो वेल करके वो अविद्यामयी बन जाती, सेल्फ फॉरगेटफुलनेस, भूल जाती कि हम एक हैं, एक से ही, एक के अंदर से निकले। तो अनेकता ऐसी बनती है कि वो सेपरेट सेपरेट होते होते भाव आता है कि हम अलग हैं, और वो अलग होते होते बिल्कुल एकदम पूरी तरह विस्मृत हो जाती है, जैसे राजा दुष्यंत भूल जाते हैं शकुंतला कौन थी, पूरी तरह विस्मृत हो गए। तो वैसे ही कुछ वो माता जी इसको एक कहानी के रूप में बताती हैं, बड़ी सुंदर कहानी है, कि जब उन एक ने निर्णय लिया तो उनके अंदर से चार ओरिजिनल बींग्स प्रकट हुए। ये चार ओरिजिनल बींग्स कौन है, वेदों में इनके नाम आते हैं इंद्र, वरुण, मित्र और आर्यमन। और अगर आप ओरिजिनल इसमें जाओ वैष्णव लिटरेचर में, तो उनके नाम होंगे कृष्ण, बलराम, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। ये धरती पर जो आए वो दे आर सपोज टू रिप्रोड्यूस दैट ओरिजिनल। और अगर श्री अरविंद, अगर हम अपने पुराणों की ट्रेडिशन को लें, तो श्री अरविंद बड़े सुंदर ढंग से इसको सिंपल कर देते हैं, कहते हैं सत एग्जिस्टेंस, इन्फिनिट एग्जिस्टेंस। तो जो एग्जिस्टेंस को अपने अंदर धारण करते हैं और प्रकट करते हैं वो कौन है, वो है ब्रह्मा। लेकिन वो ओवर माइंड में आके वो ब्रह्मा एक देवता के रूप में, तो ब्रह्मा द वर्ड एग्जिस्टेंस, जितनी भी सत्ताएं हैं वो उनसे निकलती हैं। ब्रह्मा क्या करते हैं, फॉर्म बनाते हैं सत्ताएं। चेतना चिदघन से कौन निकलते हैं, इन्फिनिट कॉन्शियसनेस, विष्णु। अब ये कॉन्शियसनेस क्या करती है, सब चीजों को एक सूत्र में, फॉर्म्स तो बन गए, सबको अनुप्राणित करती हैं और सबको एक सूत्र में बांध कर रखती हैं। तो ये जो इन्फिनिट कॉन्शियसनेस विष्णु, अब ये एक सूत्र में बांधे रखना मतलब पूरी सृष्टि का एक बैलेंस मेंटेन करना। इसलिए वो धर्म, जब भी धर्म की ग्लानी होती है तो विष्णु भगवान का एस्पेक्ट सामने आ जाता है, क्योंकि चेतना में आप बैलेंस, एक पॉइंट को टच करोगे तो सब कुछ टच हो जाएगा। चेतना ने सबको एक सूत्र में पिरोया हुआ है, जो चेतना को पकड़ लेता है वो सारी सृष्टि के रहस्य को पकड़ लेता है। फिर शिव जो चिदघन का शक्ति रूप है, जो पावर है, वो पावर फोर्स, इन्फिनिट फोर्स, वो शिव का रूप लेती है। वो चाहे तो ये सब कुछ डिसॉल्व कर सकती है। इसीलिए हरिहर, आपने कभी सुना कि, वैसे त्रिमूर्ति कहते हैं एक है, लेकिन आपने कभी सुना कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी एक हो गए, या शिव जी और ब्रह्मा जी एक हो गए? नहीं, उल्टा होता है, शिव जी ने तो ब्रह्मा जी का एक सिर भी काट लिया, वो कहानी कोई और है। लेकिन शिव और विष्णु का एक होना कई जगहों पर आता है स्टोरी में। हरिहर स्वामी तो सुना होगा आपने, अयप्पा जी की स्टोरी में भी आता है हरिहर, हरि एंड हर महादेव, क्योंकि वो एक ही चेतना, चेतना जो स्वरूप सच्चिदानंद है, उनमें से जो चिदघन है वो विष्णु भगवान में है, और जो शक्ति है, फोर्स है, वो शिव में है। दे वर्क टुगेदर। और एक चौथा जो एस्पेक्ट है आनंद, वो कौन है, इन्फिनिट आनंद, अनंत आनंद, वो श्री कृष्ण है। तो ये चार जो ओरिजिनल गॉड्स है, लेकिन अब वेल डाल करके सृष्टि के अंदर जाना है, तो वो उन्हीं में से जो ऊर्जाएं निकलती हैं, शक्तियां निकलती हैं, जब उन पे वेल पड़ जाती है तो वो फिर भूल जाते हैं कि हम कहां से आए हैं। और जैसे ही भूलते हैं तो भूलने का अल्टीमेट परिणाम क्या है, पूर्ण विस्मृति। एक समय आता है जब वो भगवान की जो सत्ता है वो बिल्कुल ऐसे चाइल्ड्स हेल्पलेसनेस में बदल जाती है, वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो सत्ता है ही नहीं। एक्सट्रीम डिप्रेशन में लोग अनुभव करते हैं, क्योंकि वो एकदम उसमें गुजर जाते हैं कि लगता है कि मैं हूं ही नहीं। इसको साइकेट्रिस्ट बताते हैं डी रियलाइजेशन, डी पर्सनलाइजेशन, लेकिन उनको ऐसा प्रतीत होता है मेरी कोई अब सत्ता है ही नहीं, सब गल गई, खत्म हो गई। नॉट हायर कॉन्शियसनेस में भी ये होती है, लेकिन ये बिल्कुल नीचे जाके भी होती है, वो इमिटेट करता है। उसी प्रकार से जो भगवान का चेतना है, इन्फिनिट कॉन्शियसनेस, वो क्या बन जाती है, अचेत, अनकॉन्शियस। तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसी अवस्थाएं, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम अनकॉन्शियसनेस में प्रवेश करते हैं। अनकॉन्शियस हो जाते हैं. अनकॉन्शियस किस चीज का, हम कौन है. अनकॉन्शियस किसका है, संसार क्या है. अनकॉन्शियस किसका कि हम वहां से आए हैं. अनकॉन्शियस किसका कि भगवान ही हमारा और हम, आई एम दैट. वी आर अनकॉन्शियस. वो चेतना अनकॉन्शियस स्टेट में प्रवेश कर जाती है. जो शक्ति है वो क्या बन जाती है, चाइल्ड हेल्पलेसनेस. मैं कुछ नहीं कर सकता. एक्सट्रीम डिप्रेशन में आते हैं ना, हेल्पलेसनेस का भाव, होपलेसनेस का भाव, मतलब ये अंधकार की शक्तियां पर कार्य कर रही हैं. तो वो अभी इसमें नहीं जाएंगे कि फिर करना क्या है. करना वही है जो इन शक्तियों ने किया. आनंद किस चीज में बदल जाता है, एक्सट्रीम सफरिंग, पीड़ा. कारण अकारण, वो कारण ढूंढ ले, लेकिन पीड़ा किस लिए, क्योंकि वो आनंद है भगवान का, वो बिल्कुल अपोजिट में कन्वर्ट हो गया. अब जब वहां पे ये शक्तियां चली जाती हैं तो उनके अंदर से एक पुकार आती है. क्या करना चाहिए जब ऐसी स्टेट में हो. देखिए कितनी प्रैक्टिकली ये सारी कहानी. हमको कहना चाहिए माँ, बस इतना कहने की जरूरत है. आपको मोबाइल की जरूरत नहीं है, SOS, मदर. और जैसे ये शक्तियां, हम कौन हैं, तो जगन माता हैं. वो अपना घर छोड़ के सेक्रीफाइस करती हैं, अपने आप को प्लंज कर जाती हैं इनकॉन्शियंट में. अब ये कहानी आती है ऋग्वेद में, मंडल 10 में. अब वहां पे ब्रह्म कहते हैं कि ये क्या हो गया, मेरी शक्ति कैसे छीन हो गई. ब्राइड ऑफ ब्रह्मन, नलिनी दा ने बड़े सुंदर ढंग से इसको डिस्क्राइब किए. वो कहते हैं कहां चली गई मेरी शक्ति, क्योंकि वो तो उन्होंने मां सुना, ऊर्जाएं चली गई, सेक्रीफाइस ऑफ द डिवाइन मदर. इसकी बात श्री अरविंद करते हैं जगह जगह, शी गोज. तो अब जब वो वहां चली जाती है, पुरुष ने तो जो सेक्रीफाइस किया था वो फॉर्म्स बनाए, वो एक अलग स्टोरी है. लेकिन जब वो कठिनाई में होती हैं, कष्ट में होती हैं, तब डिवाइन मदर का सेक्रीफाइस होता है. जब तक आप सृष्टि के लिए जो तत्व हैं वो देने हैं, वहां तक कोई समस्या नहीं है. लेकिन जब वो एक्सट्रीम इनकॉन्शियंट में, इसलिए श्री अरविंद कहते हैं मच मोर इट इज द सेक्रीफाइस ऑफ द डिवाइन मदर देन द सेक्रीफाइस ऑफ द पुरुषा. हम लोग इसकी बात करेंगे जब अप्रोप्रिएट स्थान पर, लेकिन अभी केवल इतना. तो जब डिवाइन मदर चली जाती हैं, अब भगवान, भाई क्या हो गया. ब्रह्म कहते हैं मेरी शक्ति छीन हो गई. तो अब क्या होता है कि वो जो डार्कनेस में कन्वर्ट हो गई हैं, उनको काउंटर करने के लिए एक सेकेंड लाइन ऑफ शक्तियां प्रकट होती हैं उनके अंदर से. दे आर द गॉड्स. और उन गॉड्स को काम सौंपा जाता है कि आप जाके बुलाओ, चली गई हैं रूट कर, मना के लाओ. तो सारे देवता जाते हैं और धीरे 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 उनको साथ में लाते हैं. लेकिन जब वो साथ आती हैं तो क्या करती हैं, कहती मैं अकेले नहीं साथ आऊंगी, मैं वो सब अंधकार की शक्तियों को साथ लेकर आऊंगी, क्योंकि ये भी मेरे बच्चे हैं. इसीलिए सावित्री में एक लाइन आती है ना, नॉट ओनली द वाइट गॉड्स बट इवन द डार्क डेटीज दैट लेप्ट इन रिवोल्ट, दे टू आर सेफ ए मदर्स आर्म्स डिजायर्स हर रिबेल सन्स. तो साथ आती हैं, साथ लाती हैं. और इसी प्रोसेस में छत्र सत्ता का फॉर्मेशन होता है. वो अपने ही अंदर से, अपने ही हृदय के अंदर जो सर्वोच्च प्रेम है, जो वहां पे जो भगवान ने बनाई थी ना, जो अनेकों अनेकों अनेकों, दे ऑल्सो प्लंज इन टू क्रिएशन. लेकिन एक भाग वहां रहता है जो ओरिजिनल है, टेम्पलेट. यहां भी हम लोग पढ़ेंगे द इटर्नल चाइल्ड. और एक भाग यहां पर बार बार जन्म लेता है फॉर्म्स में, तो वो सीडेड हो जाते हैं. तो वहां पे वो सेंट्रल बीइंग जीवात्मा, यहां पे चैत्य सत्ता, दोनों कनेक्टेड हैं. और अब वो चैत्य सत्ता और डिवाइन मदर का खेल प्रारंभ होता है. क्या खेल प्रारंभ होता है, अब सृष्टि वापस लौटती है. तब वापस कैसे लौटेगी उस महाअंधकार से एकदम परम प्रकाश. तो जब वो प्लंज कर रही थी तो एक सीढ़ी बनती है, स्टेप बाय स्टेप प्लंज करती है. तो हम लोगों ने तीन ऊपर की सीढ़ी की बात की, सतलोक, चिदघन लोक, तपोलोक, आनंद लोक. और तीन नीचे सीढ़ियां हैं, वहीं से बनी है. जो सतलोक है वो बन जाता है मेटीरियल वर्ल्ड. जितनी भी सत्ताएं हैं, फॉर्म फॉर्म मैटर के साथ बनता है. मैटर कैसे बना है इसकी कहीं और चर्चा करेंगे, है आएगा सावित्री में. सब कुछ, सारे रहस्य हैं. पंचभूत कैसे प्रकट हुए, कैसे बना, ये सारी चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है और प्रैक्टिकल इंटरेस्टिंग है. ये पंचभूत केवल एक थ्योरी नहीं है. फिर जो चेतना है वो क्या बन जाती है, प्राण. हर चीज को चेतना ही अनुप्राणित करती है, यहां पर वो प्राण लाइफ एनर्जी, और जो आनंद है वो क्या क्या बन जाता है यहां पर, वो चैत्य का भ्रूण वहीं से बनता है, वही है। इसलिए श्री कृष्णा इज द मास्टर ऑफ द सोल्स, तो वो चैत्य के रूप में आता है। मन कहां से आता है, अब यहां पर जो विद्यामयी है वो सुपर माइंड है। सुपर माइंड का क्या कार्य है, वहीं पर विद्यामयी रूप में महाशक्ति, वे सोल्स, इज द मदर ऑफ आवर सोल्स, उन्होंने ही उस एक के अंदर अनेकों को प्रकट किया, और वो जानती हैं ओरिजिनल। आप देखेंगे जब हाउस ऑफ द स्पिरिट में जाते हैं तो शी इज द मदर ऑफ द सोल, शी इज फ्रीली प्लेइंग विद ऑल ऑफ देम। किंतु वही जब अविद्यामयी बन जाती हैं तो ओवर माइंड, उसके नीचे की सृष्टि प्रारंभ होती है सेल्फ फॉरगेटफुलनेस की। तो जब वो अविद्यामयी बन जाती है तो वो माइंड का क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। तो वही जो सुपर माइंड है, वही यहां पर माइंड फॉलन ब्लाइंड, तो मनोमय लोक। तो अब हम देखते हैं कि प्रारंभ होती है ये यात्रा। तो अब जब तक मन तक ये यात्रा चलती है तो किसी को कुछ पता नहीं, क्यों, क्योंकि ये अविद्यामय का क्षेत्र है। यहां पे पता नहीं है अभी तक कि हम कहां से आए, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती है यात्रा, थोड़ा थोड़ा आभास होता है। ऐसे होता है कि ड्रग करके किसी ने जबरदस्ती आपको एक ट्रेन में बिठा दिया। अब आपको पता नहीं है कि ये ट्रेन कहां जा रही है, कोई बताने वाला नहीं है, आप जिससे पूछ रहे हो सब अनुमान लगा रहे हैं। कोई कहता है मेरे विचार से ये ट्रेन तो डिरेल होने वाली है, ये संसार तो कोई दूसरा कहे पता नहीं किस शैतान ने हमको इस ट्रेन में डाल दिया। तीसरा कहेगा नहीं नहीं ये जा रही है बंबई माया नगरी। किसी को कुछ पता नहीं है, सब अपनी अपनी अटकलें लगा रहे हैं। बीच बीच में भगवान आते हैं बताने के लिए कि ट्रेन कहां जा रही है, लेकिन अब कैसे आएंगे, उनको हमारे जैसा रूप धारण करना पड़ता है। तो ट्रेन में आते कहते मुझे मालूम है। तुम्हें कैसे मालूम है, हमारे जैसे दिखते हो, दो आंखें हैं एक नाक है, तो हम कैसे मान लें। तो इस प्रकार से हम अज्ञान में यात्रा, कुछ लोग होते हैं जो जानते हैं कहीं ना कहीं चैत्य डेवलप हो गया और वो जानते हैं कि नहीं ये सच में भगवान है, ये आंख नाक पर मत जाओ, नयन नक्श के पीछे कोई और नयन नक्श है मोहन के निराले, तो वो देख लेते हैं वो चैत्य, वो फिर उनके साथ लगते होती कि अच्छा हम आपके साथ हैं, तो कहते हैं ठीक है। तो इस तरह वो सोल्स को बटोरते हुए, और जगन माता पूरी जो अवेकनिंग है कुंडलिनी में आप देखेंगे लेयर बाय लेयर अवेकनिंग, जो पूरी जो नव दुर्गा है ये सेम चीज है, शैल बाला द मेटीरियल एनर्जी। तो पहले वही जो डिवाइन एनर्जी इनकॉन्शियंट में चली गई है वो कैसे प्रकट होती है, मेटीरियल एनर्जी के रूप में। कितनी प्रचंड एनर्जी है मेटीरियल एनर्जी, लुक एट दिस मेटीरियल यूनिवर्स। वही ऊर्जा फिर नेक्स्ट लेवल चेतना का अनुप्राणित होकर लाइफ एनर्जी। तो लाइफ एनर्जी क्या करती है, मैटर के अंदर क्या क्या कर्तव्य होने लगते हैं, मैटर उड़ने लगता है, रेंगने लगता है, वृक्ष पे चढ़ने लगता है, भागने लगता है। उसके बाद वही मन की ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है, और वो फिर एक कदम और, तो वो जो उड़ने वाला पक्षी है रेंगने वाला पक्षी है वो अचानक रुक जाता है, कहते लेकिन ये हूं कौन मैं जो उड़ रहा है रेंग रहा है। जिस दिन मनुष्य के अंदर ये भाव आ गया कि वो स्वयं को जानना चाहता है कि वो कहां से आया है, क्यों आया है, वो जो कुछ कर रहा है क्यों कर रहा है, उस दिन समझो उसका कल्याण का मार्ग खुल गया। और जब तक वो इससे, ये सब फिलॉसफी है, हम तो बस ये हैं जो हैं, हमारे माता पिता ने बनाया और हमने डिग्री प्राप्त कर ली, हम कौन है आप, हम इंजीनियर हैं बहुत बड़े, तो तब तक अविद्या के नेट में है। निकलना कब शुरू होता है, कहता है इंजीनियर तो मैं, मेरी पढ़ाई है, मैं वास्तव में हूं कौन। जिस दिन वो ये प्रश्न करेगा कि ये कौन है जो ये, कोई कुछ लोग कहते हैं कि जन्मों की यात्रा है, कुछ कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं है, है क्या ये सृष्टि का क्या रहस्य है, उस दिन प्रारंभ हो जाती है ये यात्रा। और जब ये प्रारंभ होती है मनोमय क्षेत्र से प्रारंभ होती है, धीरे 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 ये आध्यात्मिक ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश करती है, प्रकाश प्रारंभ होता है, करते 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 एक समय आता है जब कहते हैं अच्छा मैं वहां से आया हूं, तो फिर कहते हैं चल घुस खुश रहो घर आपने, अब रहना भाई विदेश, रात हो गई यहां पे। वो जब देखते हैं सारी दुनिया को कहते हैं ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है तो चलो वहां। लेकिन श्री अरविंद कहते हैं नहीं, आधा काम पूरा करके नहीं जाओगे, आए तो इसीलिए थे, इसी को चेंज करने के लिए। जगन माता तो अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं, तुम अपनी मां को छोड़ के चले जाओगे, कैसे विचित्र प्राणी हो। तो कुछ सोल्स जिनको मां कहती हीरोइक सोल्स, कहते नहीं, हम अब वो जान गए हैं कि वो कौन है, कहां से आए हैं, वो कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि नो आई विल स्टे हियर, और मैं यहां पे भगवान के साथ काम करूंगा। जब ये अभीप्सा जागती है तो श्री अरविंद का योग प्रारंभ होता है। तो अब ये चेतना की सीढ़ी इसलिए है ताकि रिकवरी भी स्टेप बाय स्टेप होगी, और वो रिकवरी व्यक्ति के अंदर भी होती है और समष्टि के अंदर भी होती है, लेकिन दोनों का कनेक्टेडनेस है। यदि धरती के ऊपर पहला मानव ही नहीं प्रकट हुआ तो कोई भी चैत्य मनो में उसको धारण नहीं कर सकती, इट इज नॉट पॉसिबल। चैत्य तो आई वहां से, आया वहां से, लेकिन इट हैज टू रिकवर इटसेल्फ। तो वो मनो में जगत प्रकट ही नहीं हुआ है। पशु के अंदर मन है लेकिन बहुत सीमाओं में ऑपरेट करता है, लेकिन जिस दिन पहला मानव प्रकट होता है, थिंकिंग मैन, उस दिन यह निश्चित हो जाता है कि नहीं, अब ह्यूमन बीइंग्स पूरे सृष्टि में छा जाएंगे। पहला मनुष्य प्रकट हुआ होगा, लोग पागल समझते होंगे, जैसे लोग समझते होंगे कुछ लोगों को यहां पे सुपरमैन की लेबोरेटरी में, ये कौन से पागल लोग हैं, ये सब छोड़ छाड़ के अच्छा खासा करियर छोड़ के चले जाते हैं आश्रम में। एक समय था जब आश्रम के बारे में ये चीज बड़ी प्रचलित थी कि दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, दुनिया कोई नहीं छोड़ता है, एक नई दुनिया क्रिएट करने जाते हैं। तो ये कौन लोग हैं, ये कैसा भाव होगा जब धरती के ऊपर मनुष्य आया होगा और पशु कहते होंगे ये कैसा अजीब प्राणी है, इसके तो पूछ नहीं है, इसके दांत भी कुछ ज्यादा नहीं दिखते हैं, नखून कहां चले गए इसके, अजीब सा प्राणी है, दो पांव पे चलता है, हमारे जैसा दौड़ नहीं सकता, बलिष्ठ नहीं है, डरा रहता है, सांप काट ले तो मर जाता है, ये कैसा प्राणी है। वही प्राणी एक दिन धरती पर राज करेगा। तो अब मनोमय क्षेत्र के आगे सुपरमेंटल वर्ल्ड। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मनुष्यता के अंदर से एक नई मनुष्यता या सुपर ह्यूमैनिटी की ओर जो प्रारंभ हो गई है, और धीरे 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 इट विल स्प्रेड इन मेनी वे, जैसे एक समय मनुष्यता स्प्रेड हुई थी। अब हम लोग उस युग संधि के काल खंड में खड़े हैं जहां पे मन से अविद्यामयी से विद्यामयी सुपर माइंड के अंदर हमको प्रवेश करना है, उस नया इवोल्यूशन के दौर में। लेकिन वो सुपर माइंड एक्ट किस पर करेगा, मन प्राण शरीर नीचे, तो उसको जानना जरूरी है। तो श्री अरविंद बुक ऑफ द ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड्स में ये सारा विस्तार से समझाते हैं। प्लान क्या है, बहुत सिंपल है। पहले वो बताते हैं कि ये पूरा वर्ल्ड स्टेयर कैसे बनी, जिसकी हम लोगों ने थोड़ी बात की, और फिर नेक्स्ट उसमें करेंगे। फिर वो हमें बताते हैं कि इस भौतिक जगत के पीछे एक सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म मैटर का बना हुआ जगत है, वो ट्रू मैटर है। हम लोग इसको मैटर समझते हैं, लेकिन ये तो वास्तव में, जैसे आपने देखा होगा ना कि एक प्रतिमा बनाई किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छी सी, उसके बाद उसको क्या करा जाता है, जब तक उसका अनावरण नहीं होता ढक दिया जाता है एक मोटे कपड़े से, फिर उसका अनावरण होता है धीरे धीरे। तो ये जो मैटर जिसको हम मैटर कहते हैं, ग्रॉस मैटर, ये वास्तव में इनकॉन्शियंट से निकली हुई कोई चीज है, छपाक, तो वो सारा काला कालिख लग गई, हम समझ रहे हैं कि यही ओरिजिनल है। तो एक ट्रू मैटर है, सूक्ष्म मैटर, सूक्ष्म तत्व का बना है, वो सब बात सब रिवील करेंगे श्री अरविंद। उस सूक्ष्म मैटर के जगत में भी सौंदर्य है, फॉर्म का जगत है, उसमें भी हेवेंस हैं और उसके हेल हैं, उसमें भी एक डेंजरस स्पॉट्स हैं जहां पे डेमन को भी चार्मिंग फेस दे दिया जाता है, क्योंकि वो फॉर्म का जगत है, और उसके अंदर सुंदर ऐसे वन उपवन है, बाग बगीचे में है, जिसमें कोई चला जाए तो कहे कि बहुत अच्छी जगह है। फिर उसके ऊपर प्राण का जगत है, प्राण के जगत में प्राण के हेवेंस है, पैराडाइज, जहां वो कहते हैं लोग की मरने के बाद वो जो सेमिटिक रिलीजन्स का जो स्वर्ग है, पैराडाइज, आदम हव्वा का जो स्वर्ग है, जहां पे पता नहीं क्या क्या मिलता है, बात ना ही करें तो अच्छा है। और नरक भी है, ऐसा भयानक वाइटल वर्ल्ड का जो पतित क्षेत्र है, भयानक डिसेप्शन, ए ट्रूथ वाज देयर, ए लाई एंड लाई ए ट्रूथ, तो वो भी क्षेत्र है। फिर मनोमय जगत में, मनोमय जगत की लिटिल माइंड, जहां माइंड लेबर कर रहा है जानने के लिए, समझने के लिए, और वहीं पर ग्रेटर माइंड, ग्रेटर माइंड के अंदर वो क्षेत्र है जहां मन धीरे धीरे अपनी ऊर्जाओं को प्राप्त करके तेजोमय होने लगता है। ये सारा वर्णन सावित्री में है और साथ में पूरी सृष्टि का, जैसे इंडिविजुअल सोल है वैसे वर्ल्ड सोल भी है, पूरी सृष्टि की, जो अपनी सृष्टि की जो आत्मा है, इस जगत की जो आत्मा है, तो वो कौन है, तो वो भी उसका वर्णन है कि वो इस पूरे जगत के पीछे जो जगत की जो वर्ल्ड सोल है, जैसे एक इंडिविजुअल की आत्मा होती है, वैसे इस संसार की भी आत्मा है। अगर आत्मा नहीं होती तो संसार एक सूत्र में बंधा नहीं रहता। तो उसने इस आत्मा को, उस आत्मा ने इस पूरे संसार को, मन प्राण शरीर, उसको कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक स्पिरिट कहते हैं। तो उन्होंने इस पूरे संसार को अपने अंदर धारण किया हुआ है और उसके परे सुप्रामेंटल है। लेकिन सुप्रामेंटल बुक थ्री में आता है। बुक टू में श्री अरविंद हमें ले जाते हैं ग्रेटर माइंड के ऊपर, ग्रेटर नॉलेज, जहां ओवर माइंड सुपर माइंड के अंदर बस वो बॉर्डर लाइन तक ले जाते हैं, जहां पूरा ये वर्ल्ड जो अज्ञान के बने हुए जगत हैं वो वहां तक ले जाते हैं हम लोगों को, जहां बस अब प्रवेश करने वाले हैं हम लोग ज्ञान की जगत में। ज्ञान यानी नॉट इंटेलेक्चुअल नॉलेज, नॉट मेंटल नॉलेज, बट द ट्रू नॉलेज। ट्रू नॉलेज जो आइडेंटिटी के साथ आती है। एक ही तरीका है ट्रू नॉलेज का, हम किसी चीज के साथ आइडेंटिफाई हो जाएं तो हम जान सकते हैं, और कोई बाकी सारे तरीके इनडायरेक्ट हैं। आप पूछोगे, मानोगे, सुनोगे, समझोगे, लेकिन यदि एक हो जाओगे तो आप जान जाओगे। तो दैट इज द ओनली वे टू नो। तो वो सुपर माइंड का क्षेत्र जिसकी बात बुक थ्री में श्री अरविंद करते हैं। लेकिन बुक टू, बुक ऑफ द ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड, ये सारी यात्रा, ये जो नीचे के तीन लोक हैं, मुख्य तीन लोक, लेकिन उसके अंदर जो कई स्वर्ग हैं, नरक हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, हाइज हैं, लोज हैं, उनकी ऊर्जाएं, उनके बीइंग्स, कैसे कैसे वहाँ पे सत्ताएं हैं, उसका इन्फ्लुएंस धरती के ऊपर क्या रहा है, धरती के ऊपर जो कुछ भी प्रकट हुआ है इनके इन्फ्लुएंस के कारण हुआ है, वो सारा वर्णन श्री अरविंद 15 कैंटों में बुक टू में बताते हैं। ये सबसे बड़ी किताब है, सबसे अधिक कैंटो भी हैं इसके अंदर। तो अब हम लोग अगले सेशन से एक एक कैंटो को लेकर इसके आगे बढ़ेंगे। वी विल बिकम ट्रेवलर ऑफ द वर्ल्ड विद श्री अरविंदो। माता जी हम लोगों को अब संसार घुमाएंगी। वो संसार नहीं कि टिकट लेके हम लोग चले गए फॉरेन कंट्री होके आ गए, वो तो लोग तो वही हैं लेकिन वो संसार जो हमने देखा नहीं और देख नहीं सकते, वो श्री अरविंद हमको लेकर के जाएंगे उसमें से, और उसका हम लोग आनंद लेंगे। नमस्ते।